السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي كيسي آپ سب لوگ؟ الحمد لله. جی الحمد لله. اوکے ان شاء الله ہم نبر کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم لوگوں نے نبر کے 3 سرکمسٹانسز پڑھے, جس میں سے فرسٹ ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ کسی تشدید والے حرف کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نبر کر کے سٹاپ کریں گے تاکہ اس حرف کی جو آواز ہے اس کو واضح کیا جا سکے, اور ایسے نبر کریں گے کہ اس حرف کی آواز اس کے نیبرنگ لیٹر سے تھوڑی پرومیننٹ ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تشدید والا حرف ہے وہاں ڈبل لیٹر ہے, اور جب آپ ساکن کرتے ہیں تو تشدید کو واضح کرنا ساؤنڈ کے ساتھ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس سے پھر آپ نبر کر کے وہاں پہ اس کو پرومیننٹ کرتے ہیں. کچھ ایکسیپشنل کیسز تھے, نون اور میم مشدد اور قلقلہ حرف مشدد جہاں پہ نبر نہیں کیا جاتا وقف میں, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ سرکمسٹانس تھا واو مشدد سے پہلے فتحہ یا بما, اور یا مشدد سے پہلے فتحہ یا قصبہ. تو جب بھی آپ کو یہ والے ورڈز ملیں تو آپ ان کو نبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور اب واو مشدد ہے اور یا مشدد, یہ یعنی انہی حرکات کے ساتھ یعنی ان حرکات کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ آپ کو واو مشدد ایسا ہی ملے گا کہ اس سے پہلے بما ہو یا اس سے پہلے فتحہ ہو. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ واو مشدد سے پہلے قصبہ موجود ہوگی, اور یا مشدد کا بھی یہی حال ہے کہ آپ کو انہی حرکات کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم حمزہ کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں اور اگر حمزہ سے پہلے مد لیٹر یا لین لیٹر موجود ہو تو حمزہ کے اوپر سٹاپ کرنے میں ہم حمزہ کو نبر کے ساتھ پڑھیں گے. آج ہم فورتھ اور ففتھ سرکمسٹانس کو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ سرکمسٹانس ہے کہ جب بھی کبھی آپ مد لازم کلمی مستقل پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم مد لازم کو تھوڑا ریویو کریں تو ہم نے کہا تھا کہ مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آتا ہے, اور چونکہ مستقل مد ہے تو یہ اصلی سکون, یہ جو اصلی سکون ہے یہ بیسیکلی اپنے سے نیکسٹ لیٹر میں مرج ہو کے مشدد لیٹر بن جاتا ہے. تو کلمی مستقل میں ہمیشہ آپ کو مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر تشدید کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا. تو جب یہ تشدید کے ساتھ حرف آپ کو نظر آتا ہے تو یہاں پر اس تشدید والے حرف کو ادا کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں, نبر کر کے پڑھتے ہیں. تو مد لازم کلمی مستقل میں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حرف ہی کیوں نہیں کہتے. کلمی مستقل میں جب آپ تشدید والے حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا پرومیننٹ کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ اس کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ دیکھیں کہ جو تشدید والا حرف ہے اس سے پہلے ایکچولی مد لیٹر موجود ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ مد لیٹر کا مخرج الجوف ہے. تو جب آپ کا منہ ایک غیر محقق مخرج کو ادا کرنے میں مصروف ہے تو بہت چانسز ہیں کہ اس کے بعد وہ ایک اسٹرانگ تصادم نہ کر سکے اور آپ کا جو ساکن حرف ہے وہ تھوڑا ویک رہ جائے. اور یہی وجہ ہوتی ہے, یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس تشدید کو بہت اچھی طرح سے پورا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ساکن لیٹر کے اسکپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل الضالین ایسے پڑھ دیا جاتا ہے, تو یہاں پر آپ تھوڑا سا آواز کو اٹھا کے پھر لام کو حرفین ٹائمنگ دیتے ہیں. حرفین تو ویسے بھی آپ مشدد میں دیں گے ہی, کہیں پہ بھی مشدد لیٹر ہوگا, لیکن یہاں پہ نبر کر کے دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک مد لیٹر موجود ہے اور آپ کا منہ الجوف میں بزی ہے, تو موسٹ پرابیبلی کہ آپ اس کے بعد ایک اچھا اسٹرانگ تصادم نہ کر سکے. تو آپ آواز کو اٹھا کے تو وہاں پر یعنی نبر کر کے تو اس تشدید والے حرف کو واضح کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ورڈ وللین, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نبر کریں گے. جیسے ورڈ ہے الحاقہ, Like the word दाबतीन. तो कहीं पर भी आपके पास जो मतलाजिम कलमी मुस्तकबल में मुशद्दद हर्फ को अदा करते हुए आप उससे पहले अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं. कभी एक एक्सेप्शनल केस है और वो ये है कि अगर ये मुशद्दद हर्फ नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद हो फिर आप नबर नहीं करते. ठीक है, तो उसमें हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्यों नबर नहीं करते, क्योंकि उसकी टाइमिंग्स इतनी लंथन हो जाती है कि चांसेस नहीं है कि तशदीद वाला हर्फ स्किप हो. मुशद्दद हर्फ के स्किप होने के चांसेस नहीं है. अगर मदलाजिम कलमी मुस्तकल में मद लेटर के बाद नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद पाया जाए तो आप वहां नबर नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के ऊपर हम नाखमल कर देते हैं तो वहां पर चांसेस नहीं होते कि आपका मद लेटर स्किप होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड आता है अकबो, तो आप कैसे पढ़ते? मद को पूरा करते सिक्स काउंट्स, फिर मीम के ऊपर हिट करके मीम का गुना अकमल करके फिर आप स्टॉप करते हैं. अब यहां पर आप यूं नहीं कहेंगे यहां पे अब आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि मीम के पास इतना टाइम है कि वो इटसेल्फ क्लियर हो जाए. इसी तरह से वर्ड आता है जानून, तो आप बहुत स्मूथली इसको भी बोलेंगे विदाउट एनी नंबर. आप यू नहीं कहेंगे जानून. ठीक है, यानी आप आपको नंबर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नून के पास भी इनफ गुना टाइमिंग्स है उसकी तशदीद को वाजे करने के लिए. तो बेसिकली हम इस एक चांसेस की वजह से कि आपका मुशद्दद लटर स्किप ना हो जाए, ठीक है, तो नबर करते हैं. ये अब्बामा वाले वर्ड की बात करिए, सूरत नाजियात आय नंबर 34 में वर्ड है अब्बामा, और जो जान का वर्ड है वो सूरत रहमान में आता है, ये आय नंबर 56 सूरत रहमान में है. वला जान, तो आप यहाँ पे वक्फ है, आयत का फिनिश है, उसके बावजूद आप यहाँ पर नबर नहीं करते. सूरत नाजियात आयत नंबर 34. ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ सर्कमस्टेंस था. अब हम लास्ट सर्कमस्टेंस को देखते हैं. यहां तक तो जो नबर के सर्कमस्टेंसेस थे वो काफी आसान थे. ठीक है, वो आसान इस सेंस में कि वो सारे ही तजवीद रिलेटेड सर्कमस्टेंस थे. जो सर्कमस्टेंस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी वजह थोड़ी ग्रामेटिकल है. ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर आपका कितना ग्रामर बैकग्राउंड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो चीज जरूरत है वो आपको बिल्कुल शुरू से बताई जाए. सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप ज्यादा अटेंटिव हो जाइए इंशाल्लाह. ओके, बिस्मिल्लाह. इसमें जो बेसिक चीज है वो ये कि जब भी हम ना माबी के सेंटेंस में बात करते हैं, पास्ट सेंटेंस में बात करते हैं, तो अरबिक लैंग्वेज बहुत ज्यादा वसी लैंग्वेज है. इसके अंदर आपके पास एक बंदे के लिए जब आप पास्ट में बात करें हैं और वो आपके सामने है डिफरेंट वर्ड है, और अगर वो दो बंदे हैं आपके सामने हैं तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड है, और अगर वो बहुत ज्यादा हैं उसके लिए डिफरेंट वर्ड वर्ड है, और इसी तरह से जेंडर से भी डिफरेंसेस आते हैं. ठीक है, आपके सामने अगर एक मुज़क्कर है तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड होगा, एक मुअन्नस है तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड होगा, एक ऐसा बंदा जो आपके सामने मौजूद नहीं है उसके लिए डिफरेंट वर्ड होगा. ठीक है, तो जब आप वर्ब की बात करते हैं फेल की माद्वी में यानी पास्ट टेंस में, जब आप किसी वर्ब की बात करते हैं और वो वर्ब करने वाला मुज़क्कर है और वो गायब है, तो उसमें हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन हम थ्री लेटर रूट देखेंगे, वो अमूमन वर्ड होते हैं जैसे बरबा फाला करमा, इस वजन के ऊपर आपके पास आ रहा होता है. बरबा, उसने मारा, उस एक मर्द ने मारा. अब यहाँ पे हम ये नहीं कहते तुम एक मर्द ने मारा, क्योंकि हम एब्सेंट पर्सन की बात करें, ठीक है, उस एक मर्द ने मारा। माबूई में बात करें हैं, मुजक्कर की बात करें हैं, वाहिद की बात करें हैं, और ये मुजक्कर गायब है, एब्सेंट है, लाइक थर्ड पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में थर्ड पर्सन, उस तरह से। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फाला, उस एक मुजक्कर बंदे ने काम किया। इसी तरह से आमला, उस एक मुजक्कर ने आमल किया। फिर इसी तरह से बरबा, जरबा, करमा, रहमा, इस तरह के वर्ड्स के वजन पर आपके पास वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा आता है। अब अगर इसी वर्ड को हम ना तस्निया में लेकर जाएं, तो सिर्फ आपको ये करना होता है कि आप अलिफ ऐड कर देते हैं। इसको तस्निया में लेकर जाना डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या करते हैं, अलिफ ऐड कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दौरबा, दौरबा, उन दो मुजक्कर ने मिलकर मारा। दौरबा, उन दो मुजक्कर, दो मेल पर्सन ने मिलकर मारा, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, अब ये दो लोगों की बात हुई है, लेकिन डिफरेंस क्या आया, सिर्फ एक अलिफ का, ठीक है। आमला, आमला, जैसे आप अमूमन वर्ड यूज करते हैं ना, कौला, कौला का मतलब होता है उसे एक बंदे ने कहा। अगर यही हम अलिफ के साथ बोले कौला, तो उसका मतलब हो जाएगा दो बंदों ने कहा, राइट। इसीलिए हम तजवीद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और खास तौर पर लेटर्स की लेंथ के ऊपर, कि समटाइम्स किसी लेटर को सिर्फ एक से दो हरकत स्ट्रेच करना एक से दो बंदों की एडिशन कर देता है, राइट। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम लेंथ्स को प्रॉपरली बोलें। एक और टॉपिक आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, मदूद के चैप्टर में हमने दो तीन दफा उसको पढ़ा, इल्तका उस साखी नईन का। इल्तका उस साखी नईन में हमने ये पढ़ा था कि जहां कहीं दो साकिन मीट करते हैं, इल्तिका यानी मीटिंग होती है, असाकिनैन, दो साकिन लेटर्स की, हफ्स एंड आसिम इन तरीका शातबिया में वो एज इट इज नहीं पढ़े जाते, उनके अंदर कोई ना कोई चेंज आता है। अब मैं वो सारा टॉपिक नहीं रिपीट करूंगी, उसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट लेटर जो साकिन आ रहा है, दो साकिन है ना, पहला साकिन अगर वो मद लेटर है और उसके बाद दूसरा वर्ड साकिन से शुरू हो रहा है, और दूसरे वर्ड के साकिन से शुरू होने की अलामत क्या होगी, उससे पहले आपको हमजतुल वसल नजर आएगा, ठीक है, यानी एक अलिफ नजर आएगा, और उस अलिफ में कह रही हूं सिर्फ आपके समझने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी जिसे हम अरबिक में हमजतुल वसल कहते हैं। उसके बाद जो लेटर मौजूद होगा वो साकिन होगा। दो साकिन हो गए इकट्ठे, पहला वर्ड किसी मद लेटर पर खत्म हो रहा होगा और दूसरा वर्ड साकिन से स्टार्ट हो रहा होगा, और दूसरे वर्ड के साकिन से स्टार्ट होने की अलामत क्या होगी, उससे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन, और अगर आप मदीना मुसफ इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्वाद का निशान बना हुआ नजर आएगा, जिसे हम हमजतुल वसल कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब ये दो साकिन मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या चेंज करके इसको पढ़ेंगे। अगर इस तरह के दो साकिन मिल जाएं कि पहला साकिन मद लेटर हो और दूसरा साकिन प्योर साकिन लेटर हो, मिलाने में मद लेटर को ड्रॉप करके पढ़ेंगे, में जैसे वामीलू और अस्सालिहात, तो आप क्या करते हैं, वामीलु अस्सालिहात, वकालू अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप क्या करेंगे, वाव को डिलीट कर देंगे और ये बन जाएगा वकालू अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि हम बहुत ज्यादा अरबिक नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यहां पे ये बात बता दूं कि कहीं पर भी मद लेटर को डिलीट करने से मानी में ना तो शुबा पैदा होता है ना उसके अंदर चेंजिंग के कोई चांसेस हैं। आप जब पढ़ते हैं ना वकौलुल हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत आसानी से ये समझा जाता है कि मेजॉरिटी पीपल की बात हुई कि उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, हम एक बंदे की बात नहीं करें, एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है वकौलुल हम्दुलिल्लाह, राइट। और जब आप कहते हैं वकौलुल हम्दुलिल्लाह, चाहे आप वाव प्रोनाउंस करें या ना करें, डजेंट मैटर, मानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो कहीं पर भी आप जब मद लेटर डिलीट करते हैं तो मानी के ऊपर असरअंदाज वो चीज नहीं होती, लेकिन अगर फर्स्ट वर्ड का मद लेटर इस ड्यूल को जाहिर करे, ये जो भी हमने जिक्र किया, तस्निया का सीगा है, तस्निया मुदक्कर गायब को, मुसन्ना का जो सीगा है, मुसन्ना मुदक्कर गायब को वाजे कर रहा है, और इसके बाद कोई साकिन आ जाए। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल कौला और कौला की एग्जाम्पल लेते हैं और यही वर्ड देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, अब वकौला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह को अलग पढ़ी हूँ, आप इसको तजवीद में नहीं पढ़ सकते ऐसे ना, सिर्फ ताकि आपको समझ आ जाए। आप कैसे पढ़ेंगे? वकौल अल्हम्दुलिल्लाह, उस एक बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब आपके सामने लिखा होता है वकौला अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है उन दो लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? अब ये जो दो लोगों वाली बात है ना, जब आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ तो फिर भी आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि अल्तकाउ साकिनैन आ गया ना। अब तजवीद के उस रूल के मुताबिक अलिफ तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये अलिफ इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे मानी क्लियर नहीं रहा। अब सुनने वाला ये समझ रहा है, आप तो कुरान को देख रहे हैं ना, पढ़ते हुए आप कुरान पाक पर देख रहे हैं, आपको अलिफ नजर आ गया, आपके माइंड में हो सकता है ये बात आ गई हो कि दो लोगों की बात हो रही है, मगर जो लिसनर है उसके पास तो साउंड का कोई डिफरेंस नहीं गया, उसके पास तो साउंड का कोई डिफरेंस नहीं गया, तो उसको ये लगा कि आपने कहा वह कौल अल्हम्दुलिल्लाह, एक बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं दो लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने उसको पढ़ा तो ऐसे ही वह कौल अल्हम्दुलिल्लाह, वो लिसनर को क्या पता चला कि शायद आप एक बंदे की बात करें। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम नबर को ऐड करके, क्योंकि हम अलिफ नहीं पढ़ सकते, अलिफ पढ़ना तजवीद के रूल के खिलाफ है, फिर हम क्या करते हैं, नबर को ऐड करके इस मुसन्ना सीगे को जाहिर करते हैं। और ऐसा कुरान पाक में सिर्फ तीन जगह के ऊपर आया है कि ऐसा अलिफ जो इतना इंपॉर्टेंट हो, जो मादे के मुदकर गायब के सीगे का पार्ट हो और उसके बाद साकिन आ जाए, और आपको उस अलिफ को डिलीट करना पड़ जाए, तो फिर आप वहां पर नबर को ऐड करके पढ़ते हैं। इंशाल्लाह मैं इसी सारी चीज को एग्जाम्पल के साथ फिर रिव्यू करूंगी, तो परेशान ना होंगे। पहली एग्जाम्पल है सूरतुल आराफ, आय नंबर 22, पेज नंबर है 152, सूरतुल आराफ आय नंबर 22, पेज नंबर 152, पेज के ऊपर लास्ट आया है। ये वर्ड, ये आया स्टार्ट हो रही है फदल्लाहुमा बिगुरूर, और इसके बाद आ रहा है फलम्मा ज़ाक़ुश शजरा, ठीक है। अब यहां पर ये वर्ड देखिए, ये वर्ड है, आपको नजर आ रहा होगा सबको, ये वर्ड है ज़ाक़ो अलिफ के साथ। अब अगर हम इसका वाहिद निकाले ना, ये मुसन्ना का सीगा है, अगर आप इसका वाहिद निकाले तो ये बन जाता है ज़ाक़ो, एक बंदे के लिए विदाउट अलिफ होगा, और हम तर्जुमे से जानते हैं कि यहां पर आदम अलैहि सलाम और हव्वा अलैहि सलाम दोनों का जिक्र है कि उन दोनों ने उस फल को चखा, राइट? उस दरख्त के फल को उन दोनों ने चखा था। तो यहां पर ड्यूल का जिक्र आ रहा है, और अलिफ देखने में तो हमें अलिफ से भी ये बात वाजे नजर आ रही है, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं तो सुनने वाले को लगता है कि शायद आप किसी एक बंदे की बात करें, राइट? यानी फलम्मा ज़ाक़ुश शजरा, जब आप यूं पढ़ेंगे सिंपल उसे, तो वो फिर लगेगा आपने अलिफ नहीं पढ़ा ना, तो अब वो जो एक अलिफ, दी ओनली डिफरेंस इन बिटवीन वाहिद एंड मुसन्ना, वो तो डिलीट हो गया। तो इसलिए फिर इस वजह से कि कहीं ये जाहिर ना हो कि आप एक बंदे की बात कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, नबर करके इस चीज को जाहिर करते हैं। और कैसे पढ़ेंगे फिर? ज़ाक़ुश शजरा, ज़ाक़ुश शजरा, तो आप अपनी आवाज को उठा देंगे थोड़ा सा, उठा के आप उसको फिर नॉर्मल कर लें शीन के बाद, ठीक है? फलम्मा ज़ाक़ुश शजरा, ये एक बंदे के लिए। और दो बंदों के लिए आप कैसे पढ़ेंगे? फलम्मा ज़ाक़ुश शजरा, ज़ाक़ुश शजरा, ठीक है? जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो आती है सूरत यूसुफ में, और ये है जी पेज नंबर 238, तिलकुमा शजरा, जी नहीं, तिलकुमर शजरों में, तिलकुमर शजरा नहीं है, इसके अलावा भी वर्ड आ रहा है फअजल्लाहुमा शैतान, ये भी नहीं है। इसकी रीजन ये है कि इनके वाहिद और मुसन्ना में अलिफ का डिफरेंस नहीं है। तिलका तिलकुमा, यानी तिलकुमा, इसमें कुमा वर्ड इटसेल्फ डिफरेंस की तरफ जा रहा है। जैसे फअजल्लाहुमा तो इसका वाहिद होता है फअजल्लहु या फअजल्लहा, और हुमा मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए मुसन्ना यूज होता है, फअजल्लहुमा। तो अब यहाँ पर हु हा से हुमा का जब डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो इटसेल्फ क्लियर हो रहा है। तो तिल का तिलकुमा, तो वो डिफरेंस क्लियर हो जाता है। जाली का जालिकुमा, तो वो डिफरेंस खुद ही क्लियर हो जाएगा। हा हुमा हुम, तो आप देखिए, अगर एक फजल्ला हा, अगर हम फजल्ला हुमा की बात करें, तो अगर वाहिद मुजक्कर की बात होती तो कहा जाता फजल्ला हु शैतान, यानी आदम अलैहि सलाम को स्लट किया शैतान ने। अगर मुअन्नस की बात होती तो कहा जाता फजल्ला हा शैतान, यानी हव्वा अलैहि सलाम को स्लट किया शैतान ने। अब चूंकि कहा गया फजल्ला हुमा शैतान, तो अब देखिए वो हु शैतान, हर शैतान, हुमा शैतान, इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। सही, तो यहां पर जो है ये, यहां पर सिर्फ अलिफ का डिफरेंस है जो साउंड में खत्म हो जाता है। समझ आ गई बात? ओके, अब हम आ जाते हैं सूरत यूसुफ आयत नंबर 25, पेज है 238। इसमें वर्ड है वस्तबकुल बाब। जी, अब हम जानते हैं कि सूरत यूसुफ की स्टोरी के इस पार्ट में यूसुफ अलैहि सलाम और उस खातून का जिक्र है जिसका नाम जो है वो जुलैखा बताया जाता है कुछ रिवायत में। तो उसमें जो वर्ड आता है वस्तब को, इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों ने, अलिफ चुके आ गया ना, इन दोनों ने क्या किया, सबकत हासिल की एक दूसरे से, अलबाब दरवाजे की तरफ। अब अगर इसको वाहिद में लेकर जाया जाए, वाहिद मुजक्कर में, तो ये होगा वस्तबको विदाउट अलिफ। और आप देखें कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो साउंड डिफरेंस नहीं है, वस्तबकुल बाब, वस्तबकुल बाब। तो फिर आप नबर करके जाहिर करते हैं कि सिर्फ यूसुफ अलैहि सलाम ने दरवाजे, क्योंकि जब आप वस्तबकुल बाब यानी अलिफ के बगैर पढ़ते ना, तो वो औरत के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, वो मर्द के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये बात आप जाहिर करते हैं कि सिर्फ यूसुफ अलैहि सलाम ने दरवाजे की तरफ सबकत हासिल नहीं की, बल्कि दोनों ने दौड़ लगाई। ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं, नबर करके, वस्तबकुल बाब, वस्तबकुल बाब। ठीक है, अब आप यूं नहीं पढ़ेंगे, वस्तबकुल बाब, वस्तबकुल बाब, नॉर्मल नहीं, बल्कि कुल बाब, ठीक है, नबर के साथ। सही जी, लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए, सूरत नमल आया नंबर है। इस वर्ड को एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। आया नंबर है 15, सूरत नमल 15, पेज नंबर है 378। ठीक है, और ये वर्ड है, इसमें अब आप देखिए आयत की जो बिगिनिंग है वो है वलकद आतेना दाऊद व सुलेमान इल्मा, कि और अलबत्ता तहकीक हमने अता किया दाऊद अलैहि सलाम और सुलेमान अलैहि सलाम को इल्म। तो इल्म के अता होने पर दोनों ने क्या कहा, और फिर हम सबको क्या कहना चाहिए, उन दोनों ने क्या कहा, वकौला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप यहां पर देखें कि यहां पे अब जो कौला है वो अलिफ के साथ है। सही, यहां पे कौला जो है वो अलिफ के साथ है, और अगर ये अलिफ के बगैर होता तो मोस्ट प्रोबेबली ये सुलेमान अलैहि सलाम की तरफ जाता, क्योंकि सुलेमान अलैहि सलाम आखिर में उनका जिक्र आ रहा है ना। तो अगर आप सिर्फ अलिफ के बगैर मेंशन किया जाता तो इसका रुझान सुलेमान अलैहि सलाम की तरफ होता कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह क्या, लेकिन चूंकि दोनों का जिक्र है तो आप यहां पर जब अलिफ को डिलीट करके पढ़ेंगे तो इससे मानी पे फर्क पड़ सकता है, और सुनने वाला शायद ये समझे कि शायद सिर्फ सुलेमान अलैहि सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जबकि राइटिंग में आपको ये बात नजर आ रही है कि नहीं, दोनों ने ये बात कही। फिर आप क्या करते हैं, नबर करके इसको वाजे करते हैं। ये एक स्टाइल है जो कि अरबिक लैंग्वेज में भी मौजूद था, और फिर इसको ऐसे ही पढ़ के हमें भी सिखाया गया, और हम तक अल्हम्दुलिल्लाह आवाज का इतना उतार चढ़ाव भी जो है वो महफूज तरीके से पहुंचा। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वकौलल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि थोड़ा सा आवाज को, यानी लाम को अदा करने से पहले जो लाम अलिफ है उसको और सेकंड लाम के बीच में अदा करने से पहले आप आवाज को उठाएंगे। सिंपल पढ़ने के लिए वकौलल्हम्दुलिल्लाह, वकौलल्हम्दुलिल्लाह। और जो दियुल के लिए, मुसन्ना के लिए पढ़ने के लिए वकौलल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा लास्ट था। इसके अलावा कुराने पाक में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। मुझे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स खुद से डिस्टर्ब करते रहे। इंशाल्लाह मैं एक आध वर्ड आपसे शेयर करूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी मुझे उसमें बहुत थोड़ा रिसर्च करनी पड़ी, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जिसकी वजह से मैं इंशाल्लाह उसको थोड़ा डिस्कस करूंगी आपके साथ, और फिर हम इंशाल्लाह नबर के टॉपिक को खत्म करेंगे। फिर हम इसको यहीं तक रखते हैं, ट्यूसडे को फिर इंशाल्लाह इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। आमीन वयाकुम बारकुम अल्लाहु फीकुम। जी, आप सब जो है वो दिल से एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का प्रॉमिस है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला अपनी नेमत में इजाफा करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।